अभी एक और संवाद बचा है चर्चा करने का। कल हमने सारमठाचार्य के साथ संवाद संवाद के बारे में बताते हुए सारमठाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को बताया कि जब आप दक्षिण भारत की यात्रा में जाओगे तो आप जरूर रामानंद राय से मिलना, क्योंकि रामानंद राय साधारण से व्यक्ति नहीं है, वो कृष्ण के तत्व के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसलिए आप रामानंद राय से जरूर मिलिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा को प्रारंभ करते हुए वो निकल पड़े दक्षिण भारत की ओर, और चलते चलते आए गोम क्षेत्र से गुजरते हुए वो पहुंचे जियारा नरसिम्हा सिम्हाचलम पे, उधर खूब नृत्य किए, नरसिम्हदेव को भगवान का दर्शन किए और नरसिम्ह प्रार्थनाएं किए, उग्रम वीर महाविष्णु जलंतुम विश्वतोमुखम, जो नरसिम्ह स्तुति करने के बाद वो नीचे और आते आते वो पहुंचे राजमंड्री। राजमंड्री आंध्र प्रदेश का एक बहुत सुंदर सा जगह है जिसमें गोदावरी नदी बहती है, और उसी राजमंड्री के नज़दीक में एक नज़दीक में एक जगह है, उसका नाम है कोवूर। श्री चैतन्य महाप्रभु उस कोवूर जगह पे वो क्या कर रहे थे, वो बैठे थे गंगा में, उधर राजमंड्री में स्नान करके जैसे बैठे थे, उन्होंने देखा दूर से एक व्यक्ति पालकी में आ रहा है और बहुत सारे ब्राह्मण कुछ वैदिक मंत्रों को उच्चारण करते हुए वो आ रहे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु उनको दूर से देखे पहचान गए कि साधारण से व्यक्ति नहीं, ये रामानंद राय है, क्योंकि उनके कार्यकलाप उनसे ही पता लगता है कि उनके या उनके चेहरे से पता लगता है कृष्ण के महान भक्त है करके वो सोचने लगे, और इस प्रकार वो रामानंद राय के बारे में या उन मिलने का उनको खूब लालसा उत्पन्न हुई। तब जैसे रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु सोच रहे थे जाके उनको रामानंद राय को आलिंगन करूं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है तो वो तो एक रामानंद राय उस समय के मद्रास इलाके के वो गवर्नर थे, तो उनका निवास था अस्तित्व में मद्रास में था, लेकिन राजमंड्री में उस समय गोदावरी का पुष्कर का समय था, तो इसलिए पुष्कर का समय में वो नदी में स्नान करने के लिए रामानंद राय उस समय आए थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने के नाते उधर ही बैठे रहे, दूर से रामानंद राय ने जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु देखा और दूर से भागते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को आके चरण पकड़े और दोनों आलिंगन करते हुए कृष्ण प्रेम भाव विभोर होते हुए वो नृत्य करने लगे। इनसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि आप ही रामानंद राय हो, तो इन दोनों के बीच में लोगों का ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों का बहुत वर्षों का उनके बीच में संबंध है, उनको मालूम नहीं पड़ रहा था इन बाकी सब ब्राह्मणों को, अरे ये तो इस जगह का राजा है, ये नृत्य करते हुए रोते हुए इनको आलिंगन करना है, वो भी एक सन्यासी को, और साथ साथ में भी एक सन्यासी है, ये इस प्रकार की इन दोनों के बीच में क्या आदान प्रदान चल रहा है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो रामानंद राय इन सब बाकी ब्राह्मणों को देखे, उन्होंने विचार किया कि ये उचित जगह नहीं है, कि उचित समय नहीं है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु को बैठ के इस प्रकार की चर्चा करें, क्योंकि ये ब्राह्मण जो है वो राधा कृष्ण प्रेम के बारे में क्या जान सकते हैं। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को बताया कि मैं शाम को आपसे मिलता हूँ, आपसे फिर वापस आके बात करता हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु को एक ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया निमंत्रण और शाम को श्री रामानंद राय का इंतजार कर रहे थे। जैसे रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के आते हैं, तब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि मुझे आप जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसके बारे में आप बताइए, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। लेकिन शास्त्रों से कोटेशन करते हुए जीवन का लक्ष्य के बारे में बताइए आप। तब रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु को सबसे पहला कहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है वर्णाश्रम धर्म को पालन करना। वर्णाश्रम धर्म को किस प्रकार पालन करना, कृष्ण को बीच में रखे हुए वर्णाश्रम धर्म को पालन करना। तो विष्णु पुराण का एक श्लोक है, वर्णाश्रम समाचार वता विष्णु पुरुषेन पमाम नान्यत् तत्तोष कारणम् आराध्यते नान्यत् तत्तोष कारणम्। वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य है किस प्रकार कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, तो कृष्ण को बीच में रखे हुए वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये वर्णाश्रम धर्म को पालन करना ये जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को सुना, रामानंद राय को बताया कि ये तो बाह्य, आगे कहो और आगे कहो, क्योंकि ये तो बाह्य है, बाह्य मतलब एक्सटर्नल। तब रामानंद राय ने कहा कि ये तो आपने स्वीकार नहीं किया, मैं बताता हूँ। यद करोषि यद हस्तनाशि यद जोश यद तपस्सी कौंते तत्कुरुष्वामदर्पणम्, यानी कोई भी कार्य करते हो कृष्ण को समर्पित करते हुए, कर्म फल त्याग, कर्म फलार्पण, हमारे कर्मों का जो फल है उसको कृष्ण को अर्पण करना जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। और भगवद गीता का जो भगवान का ये जो श्लोक है, भगवान के द्वारा उच्चारित श्लोक है, यद करोषि यद जोश यद हस्तनाशि, जो करते हो, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, सब कुछ भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए करो। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को सुना तो रामानंद राय को कहे ये तो बाह्य, आगे कहो आप, ये तो बाहर की चीज है, एक्सटर्नल है, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा और आप आगे जाओ। तब रामानंद राय बताते हैं कि जो सारे कार्यों को त्याग करना, यानी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि आशुचः, सारे प्रकार के धर्मों को त्याग करना ये जीवन का लक्ष्य है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को सुना, ये तो बाह्य, आगे को हो रहा है, तो ये देखिए जो भगवद गीता का जो सर्वोच्च चरम श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य, ये कोट करने के बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नहीं, ये भी स्वीकार नहीं करूंगा, कुछ और कहो। तब रामानंद राय बोलते हैं कि ज्ञान मिश्र भक्ति ये जीवन का लक्ष्य है, भगवान को भक्ति करना लेकिन ज्ञान को साथ में रखते हुए। उसका उदाहरण के लिए वो श्लोक बोलते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समं सर्वेषु भूतेषु मन भक्तिम लभते पराम। तो ये ज्ञान मिश्र भक्ति है ये जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं, ये तो बाह्य, आगे कहो आगे, आगे कहो और इज ऑल्सो एक्सटर्नल, प्लीज स्पीक फर्दर। तब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय बताते बोलते हैं कि अभी जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य यही है कि भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति, ज्ञान और नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार का जो प्रयास है उसको त्याग करते हुए भगवान का शुद्ध भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। तब भागवतम का बहुत जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो कोट करते हैं, बोलते हैं कि ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्त्येव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितं श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर् ये प्रायसोत्पीय अजितोऽपि जितः तैस्त्रैलोक्यम्। बोलते हैं कि श्री रामानंद राय कि ज्ञाने प्रयास उदपास्य, नाना प्रकार का जो प्रयास है ज्ञान का प्रयास है उदपास्य त्याग करके, नमन्त्येव केवल प्रमाण प्रणाम करना, किसको नमन्त्येव जीवन्ति इस प्रकार जीना, नमस्कार करते हुए जीना, जिसको नमस्कार करना सन्मुखरितं भवदीय वार्तां, जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां, जो संतों से मुख से उत्पन्न हुआ जो वार्ता है, जो भवसागर को पार कराने की उनकी क्षमता है उसके अंदर, तो वैसी वार्ता को प्रणाम करते हुए उनका श्रवण करते हुए आपका जीवन बिताना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन संतों से उत्पन्न हुआ जो वार्ता को सुनता है, उनकी बातों को सुनता है या श्रवण करता है, तो क्या होता है भगवान जो अजित है, अजित मतलब ये तीनों लोकों में जिनका कोई जो कोई व्यक्ति उनके ऊपर जीत नहीं सकता, वैसे अजित है भगवान का एक नाम है अजिता, जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता, जीत नहीं सकता, वैसे अजित भी उस व्यक्ति के द्वारा जीत सकता है, वो व्यक्ति उन अजित को भी जीत जाता है, यानी भगवान को भी परास्त कर देता है, भगवान उनके वश में हो जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया कि जैसे कोई व्यक्ति भागवत का श्रवण करता है हृदय अवरुद्यते तत्र कृति भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्। भगवान हृदय में बंधे जाते हैं, यानी भक्त के द्वारा भगवान जो है वो जीते जाते हैं। तो ये कैसे होगा? भगवान का गुणों का श्रवण कीर्तन करने से। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्राह्मणंद राय ने श्लोक को कोट किया और बताया कि शुद्ध भक्ति सर्वोच्च लक्ष्य है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताए ये हो है, ये चलेगा, आगे कहो आर और आगे कहो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये पिछले के जो चार श्लोक है, चार चीजें जो रामानंद राय ने बताया था वो क्यों त्याग किया? सबसे पहला रामानंद राय का प्रस्ताव था वर्णाश्रम धर्म, कृष्ण को बीच में रख के वर्णाश्रम धर्म को पालन करना। दूसरा चीज था कर्म फल त्याग, कर्म फलार्पण, तो कर्मार्पण जो भी करोगे कृष्ण के लिए करो, इसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और तीसरा उन्होंने बताया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसको भी उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य यानी सर्वधर्म को त्याग करना। और चौथा चीज श्री चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा रिजेक्ट किया? जब रामानंद राय ने प्रस्ताव रखा था ज्ञान मिश्र भक्ति। तो ये चार चीजें जो ज्ञान मिश्र भक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ये श्लोक के द्वारा वो स्थापित करते हैं, तो इसको भी उन्होंने त्याग किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु इन चारों चीजों को क्यों त्याग किया कि सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में या द गोल ऑफ लाइफ के रूप में क्यों त्याग किया, जीवन का लक्ष्य के रूप में इन चारों चीजों को क्यों स्वीकार नहीं किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने? अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मैं अपना भजन करूंगा भक्ति करूंगा, तो अभी भी वो सोच रहा है कि मैं एक ब्राह्मण वैष्णव हूं, ब्राह्मण भक्त हूं, मैं एक वैश्य भक्त हूं, मैं एक ब्रह्मचारी भक्त हूं, ये गृहस्थ भक्त है, तो मैं सन्यासी भक्त हूं, तभी भी शारीरिक तर की पहचान है। कभी भी ब्रह्मचारी अगर सन्यासी भी है, अपने आप को सन्यासी समझता है कोई व्यक्ति, तो क्या सन्यास जो है वो क्या आध्यात्मिक पहचान है व्यक्ति का? नहीं, ये भी भौतिक पहचान है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, नाहम विप्रो न च नरपतेर ना भी वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतेर न वनस्थो किंतु तिरवा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धैर गोपीवर्तु पदकमलयोर दासदासानुदासः। गोपीवर्तु पदकमलयोर दासदासः, मैं कृष्ण का जो गोपियों के भर्तु है उनके पदकमल का उनके चरण कमलों का दास का दास का दास हूँ। मैं ना ब्राह्मण हूँ, मैं ना क्षत्रिय हूँ, मैं ना वैश्य हूँ, मैं ना शूद्र हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ। मैं कौन हूँ? भगवान के दासों का दासों का दास हूँ। आई एम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुना रामानंद राय को, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि वर्णाश्रम धर्म अभी भी शारीरिक स्तर का पहचान है। तो उसके बाद रामानंद राय ने प्रस्ताव रखा था कि कर्मार्पण। कर्मार्पण में क्या होता है, वह व्यक्ति सोच रहा है बहुत मेहनत करके काम धंधा कर रहा है, करके जो फल है कृष्ण को अर्पित कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, इससे ऊंची बात है, क्योंकि अभी उनका पहचान ये नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं, उस प्रकार का कोई पहचान नहीं। लेकिन अभी क्या है उनका प्रॉब्लम, हाँ ये है कि अभी भी उनका आसक्ति जो है वो कार्य के प्रति है, अभी भी जिसके लिए कार्य कर रहे उनके प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न हुआ। हिज अटैचमेंट इज टू वर्क नॉट टू द पर्सन हु इज वर्किंग। अभी भी मैं कर रहा हूं, मेरे करने की वजह से कुछ फल आ रहा है, मैं इस फल को भगवान को दे रहा हूं। अभी भी ये फल कार्य करने की क्षमता के प्रति लगाव, कार्य करने के प्रति लगाव है, लेकिन जिसके लिए जो आप अर्पण कर रहे हो उनके प्रति अभी भी लगाव उत्पन्न नहीं हुआ। स्टिल यू आर अटैच्ड टू योर बॉडी एंड सेंसेस बिकॉज यू आर वर्किंग। तब श्री चैतन्य महाप्रभु इसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु तीसरा चीज को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसको क्यों उन्होंने अस्वीकार नहीं किया? ये तो भगवद गीता का चरण श्लोक ही है। इधर ये बात ये है कि अगर व्यक्ति के मन में इस भावना है मैं त्याग करूंगा, इसका मतलब क्या है? अभी भी ये व्यक्ति सोच रहा है ये मेरा है, अभी मैं त्याग कर रहा हूं। और साथ साथ में ये त्याग की जो भावना है या सर्वधर्मान परित्यज्य ये जो भावना है ये अस्तित्व वैष्णव सिद्धांत नहीं है। वैष्णव सिद्धांत क्या है? यथार्थ उपयुंजता निर्बंधन कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्चते जो भी वस्तु है, जो भी स्थिति में आप हो, हर चीज कृष्ण की सेवा में लगाना, ये हमारा सिद्धांत है। ये त्याग करना ये हमारा सिद्धांत नहीं है। और त्याग करने के समय भावना अभी भी ये रहता है कि ये मेरा है, अभी मैं इसको त्याग कर रहा हूँ, हाँ मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये सर्वधर्मान परित्याग भी श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते आगे कहो आर और आगे जाओ। जैसे उन्होंने बताया ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोचति ना कांक्षति, यानी चौथा बात उन्होंने ज्ञान मिश्र भक्ति का जो प्रस्ताव रखा रामानंद राय ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको भी स्वीकार नहीं किया जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य के बात रूप में। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान मिश्र भक्ति के अंतर्गत भक्ति तो है, मत भक्तिम लभते पराम, लेकिन अभी भी उनका ये समझ है ये शरीर है ये आत्मा है, हाँ तो ये शरीर नहीं है व्यक्ति, हाँ ये आत्मा है। तो इस प्रकार की धारणा में अभी भी कुछ सूक्ष्म और स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में ये भौतिकता के प्रति और भी संपर्क है और थोड़ा सा कंटामिनेशन है, ज्ञान का मिश्रण है। भगवान को इसलिए पूजा किया जाता है, भक्ति किया जाता है, क्योंकि अभी भी आपको मालूम है कि अभी ये तो मृत्यु आने वाला है, मृत्यु से बचना है इसलिए भगवान को भजन करना है, इस प्रकार की भावना है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को सुना रामानंद राय से, स्थाने स्थितम श्रुतिगताम तनुमान मिला, आप इधर उधर जाओ मत, जाओ उधर बैठे रहो और कृष्ण का कीर्तन करो, हाँ कृष्ण का नाम स्मरण करो, इधर उधर और सोचने की जरूरत नहीं। शुद्ध भक्ति का जैसे प्रस्ताव रखा श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, उन्होंने बोला ये होय, हाँ आई एक्सेप्ट प्योर डिवोशनल सर्विस, ये होय आगे को हार। तब श्री चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय सुनाते हैं, तो ये तो शुद्ध भक्ति है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति में भी दो स्तर है। एक है जो है भक्ति जो है वो साधन के अंतर्गत किया जाता है, इसको साधन भक्ति बोला जाता है। ये साधन भक्ति से परे है राग भक्ति, जिसके अंदर केवल कृष्ण के प्रति राग और प्रेम से उत्पन्न हुआ, वो प्रेम से प्रेरित होते किया गया कार्य है। साधन भक्ति के अंतर्गत कार्य क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि मुझे करना है इसलिए करता है, औपचारिकता के रूप में कार्यकलाप करता है, श्रवण कीर्तन वगैरह, हाँ श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, ये सारे कार्यकलाप कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? ओ मुझे मेरा ड्यूटी है इसलिए कर रहा है, इस प्रकार करता है। लेकिन इसके परे और एक भक्ति है, वो है राग भक्ति या प्रेम भक्ति। ये भक्ति को प्राप्त करना है तो इसके लिए एकमात्र मूल्य को चुकाना पड़ेगा, वो है लोभ यानी लौल्य। ये लौल्य के बिना वो जो प्रेम भक्ति है वो प्राप्त नहीं होगा। तब रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु को एक श्लोक सुनाते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भावित भक्ति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम विमूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति रस भावित मति, कृष्ण भक्ति से में डूबा हुआ जो मति है, उसका रस को आस्वादन करने वाली जो मति है, वैसा मति जो हमेशा कृष्ण की भक्ति का रस को आस्वादन करता है, वैसा रति को अगर आपको प्राप्त करना है आपको एक मूल्य चुकाना होगा। वो क्या है वो मूल्य? व्हाट इज द प्राइस यू हैव टू पे फॉर इट? द प्राइस इज इंटेंस ग्रीड टू ऑब्टेन इट। उस कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना, वो रसभावित मति को प्राप्त करना, वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का जो लालसा है, वो प्राप्त करने का जो लौल्य है, वो लौल्य मात्र एक मूल्य है। इसलिए तत्र लौल्यम अपि एकलम मूल्यम एकलम, उसका मूल्य क्या है वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का? उसको प्राप्त करने की लौल्य मात्र एक मूल्य है। जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते, जन्म कोटि हजारों करोड़ों नाको जन्मों की कोटि जन्मों का सुकृति, दान धर्म करो ये करो अपना प्रयास साधना भक्ति भी करते रहो, अगर आपके अंदर लोभ नहीं है कृष्ण को प्राप्त करने का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, कभी भी आप जन्म कोटि कोटि जन्मांतर करते करते सुकृति भी आपको ये प्रेम भक्ति के प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये साधन भक्ति जो है उसमें से प्रेम भक्ति के अंतर्गत भाव भक्ति के अंतर्गत व्यक्ति कब जा सकता है? जब उसके अंदर लौल्य है, लोभ है, कृष्ण को प्राप्त करने का लोभ है। नहीं तो साधना चलता रहेगा, मैकेनिकली चलता रहेगा, हरे कृष्ण मंत्र जप चलता रहेगा, हर चीज चलता रहेगा, लेकिन ये लोभ के बिना कृष्ण को बारे में और सुनने की लोभ, कृष्ण को प्राप्त करने की और लोभ, कृष्ण की सेवा को करने की ये लोभ होना चाहिए, इंटेंस ग्रीड टू ऑब्टेन इट तत्र लौल्य में मूल्यम। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बात को सुनते हैं, ओ ए हो और आगे को और सुनना चाहता हूँ, मेरे अंदर और उत्कंठा बढ़ रहा है, जरा बताओ। तो बोले इस प्रकार की जो प्रेम भक्ति है उसके अंतर्गत सबसे पहला बात यह है कि दास्य रस में उनकी सेवा करना। जो व्यक्ति कृष्ण का दास बन जाता है तो उसको और कोई सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार जिस व्यक्ति का नाम या कृष्ण का नाम एक व्यक्ति सुन लेता है, उनका कीर्तन करता है, कृष्ण उनको देखभाल करने लग जाते हैं, कृष्ण प्रति उनका आकर्षण बढ़ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति उनका सेवा करने बैठ जाता है तो उनको क्या करना, क्या चिंता करना, कोई और चीज के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दास्य रस जो है सर्वश्रेष्ठ है। तब एक बहुत सुंदर श्लोक स्तोत्र से कोट करते हैं, ये बोलते हैं कि ये मैं नित्य किंग करूं, मैं इस बात को स्मरण करता हूं कि हमेशा मैं नित्य आपका दास हूं। इस दासता की वजह से मैं संसार के जितने भी ताप है वो भूल सकता हूँ, नहीं तो ये संसार के तापों से दुखों से मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ। तो इस बात को कोट करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुना तो उन्होंने बताया ये भी स्वीकार है, लेकिन और आगे कहो, मैं और सुनना चाहता हूँ। तब रामानंद राय बोलते हैं कि कृष्ण के प्रति जो साख्य रस है, दास के बाद साख्य आता है, साख्य रस और मधुर है। तब ग्वाल बालों का उदाहरण देते बोलते हैं कि इनका कितना सौभाग्य है, दास्यम गतानाम परदेवतेना, ये कितना बड़ा सौभाग्य है इन लोगों का, इन ग्वाल बालों का, कि कृष्ण इन ग्वाल बालों को अपने ही अंगों के बराबर वो स्वीकार करते हैं। जैसे अगर हमारा हाथ ही हमारा पैर को या शरीर को लगे तो हमको कोई खराब नहीं लगता, अगर कोई और व्यक्ति आके उनका हाथ हमारे शरीर के ऊपर लगा रहा है ऐसा लगता है कि क्या ये क्या हो रहा है। तो जब ग्वाल बाल कृष्ण के ऊपर कूद देते हैं, उनको नीचे गिरा देते हैं, उनके कंधे ऊपर चढ़ देते हैं, कृष्ण को ऐसा लगता था कि उनका ही शरीर के अंग उनको स्पर्श कर रहा है, तो ग्वाल बाल उतने प्रिय थे। तो भागवत में वर्णन किया गया है कि इनका कौन सा महासौभाग्य है कि उनको इस प्रकार नंद महाराज के आंगन में कृष्ण के साथ इस प्रकार क्रीड़ा करने के सौभाग्य मिला है। तब आगे चलते हुए और बोलते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु मैं और सुनना चाहता हूँ। तब रामानंद राय वात्सल्य रस के बारे में वर्णन करते हैं, वात्सल्य रस के बारे में वर्णन करते हुए बोलते हैं कि ये यशोदा और नंद महाराज कितने जन्मों का तपस्या है इनका, इतना सारा जन्मों का तपस्या के बाद इस प्रकार का उनको सौभाग्य मिला कि तो स्वयं भगवान को उनके यशोदा माई के स्तन का पान कर रहे हैं और नंद महाराज स्वयं उनके आंगन में कृष्ण अलग अलग अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। ये जो है ये वात्सल्य रस और ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन रामानंद राय को निवेदन करते हुए श्री चैतन्य और बोलते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे और सुनने का विचार हो रहा है, और सुनने का मन कर रहा है, तो और आगे कहो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय बोलते हैं कि ये जो है सर्वश्रेष्ठ है, ये माधुर्य रस जिस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के साथ जो लीलाएं करती है, ये गोपियों को जो प्राप्त हुआ सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी सब जितने भी रसों में जो गुण है वो सब इस माधुरी रस में युक्त है। जैसे रूप गोस्वामी के संवाद में हमने चर्चा किया किस प्रकार शांत रस में केवल अप्रिसिएशन सलाहना रहता है, और दास रस में सलाहना के साथ साथ में सेवा की भावना रहता है, और दास्य साख्य रस में सलाना के साथ दास्य के साथ और मित्रता की समानता की भावना रहता है, और वात्सल्य में समानता एक के साथ साथ सेवा की भावना के साथ साथ और सलाना के साथ साथ और एक गुण क्या रहता है वात्सल्य रस में कि मेरे ऊपर भगवान निर्भर है, आई एम डिपेंडेंट, आई एम सुपीरियर टू गॉड, मैं भगवान से मेरे ऊपर निर्भर है, मैं उनको देखभाल करना मेरा कर्तव्य, इस प्रकार की भावना। लेकिन माधुरी में वो जो घनिष्ठता है वो और रसों में प्राप्त नहीं होता, ये एक्सक्लूसिव बात है, द इंटीमेसी इज ओनली फाउंड इन माधुर्य। तो इसलिए ये सारे जो रस के सारे गुण हैं, सलाना, दास सेवा की भावना और वात्सल्य और माधुर्य और साक्षी की जो गुण है वो सब माधुर्य के अंतर्गत है। तो इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में कि मैं जैसे यो दाम माम प्रपद्यन्ते तामस्तय भजामि, जो जिस प्रकार के लोग मेरे साथ आप मेरे पास आते हैं उसी प्रकार मैं उनका हूँ, भजन करता हूँ, मैं उनको रेसिप्रोकेट करता हूँ, और दो कदम मेरे मेरे ओर बढ़ाएंगे तो मैं दो कदम उनके ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन कृष्ण का स्वयं की ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गोपियों के सामने फेल हो जाता है। हाँ, बोलते हैं कि ना पा रहे हम, जैसे भागवत में वर्णन करते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि गोपियों का जो ऋण है मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। हाँ, उन्होंने जो किया है मेरे लिए, मैं उनके लिए मैं क्या करूँ। उन्होंने सब कुछ, जो भी था सब कुछ उन्होंने त्याग किया है, वेद धर्म लोक धर्म आपके परिवार पत्नी बच सबको त्याग करके मेरे इतना शरण में आए, तो मैं इनका जो ऋण है मैं कभी न चुका नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय ने जैसे इन चीजों को सुनाया तो रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश है, बोले कि रामानंद राय कि आप जो बोल रहे हो बहुत और अच्छा लग रहा है, तो और आगे कहो आप। तब रामानंद राय वर्णन करना शुरू करते हैं किसके बारे में, और गोपियों के बारे में, गोपियों और कृष्ण की जो लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं, और बोलते हैं कि बहुत सारे गोपियां हैं कृष्ण को आनंद देने वाली, लेकिन उनमें से एक गोपी है जो सर्वश्रेष्ठ है। रासलीला जब खास करके होता है तो उस समय दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण होते हैं, लेकिन ये एक विशेष गोपी है जिनका नाम है श्रीमती राधा रानी, उनके साथ कृष्ण वो अकेले, उनके साथ में एक्सक्लूसिवली इज विद हर। तो स्वयं कृष्ण जो है उनके साथ रासलीला नृत्य करते हैं। अस्तित्व में रासलीला का वास्तविक सूत्रधार कौन है, श्रीमती राधा रानी है। तो एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी को मान की भावना चढ़ गई, क्या मेरे साथ कृष्णा एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू मी, ऐसा कैसे कि ये कृष्ण सबके साथ भी नाच रहे। कभी कभी दो प्रकार का मान चढ़ता है, एक साथ कभी कभी कारण के साथ, कभी बिना कारण के साथ। अभी कृष्ण उनके साथ में है लेकिन बिना कारण से कभी कभी उनको गुस्सा आ जाता है, ये राधा रानी का कभी कभी प्रकार की भावना होता है। तो वो एक दिन ऐसा, वो एक बार ऐसा हुआ, रासलीला हो रहा था, राधा रानी रासलीला को छोड़ के चली गई। जैसे श्री कृष्ण ने देखा कि रासलीला में राधा रानी नहीं है तो उन्होंने सोचा कि रासलीला का क्या फायदा, ये इसका कुछ काम का नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी के ढूंढते ढूंढते गए तो उनकी, जैसे राधा रानी उनको प्राप्त नहीं हुई, उनके अंदर विरह की भावना उत्पन्न होकर वृंदावन की बुशस में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के वो कृष्ण के राधा रानी के विरह में वो लैमेंट या बहुत शोक प्रकट करने लगे। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी बात को सुना, रामानंद राय को बता दे है कि ये तो है बहुत सुंदर है, मुझे और आगे सुनाओ। हाँ, अस्तित्व में ये बातें सुन के मुझे बहुत आनंद का महसूस हो रहा है। तब रामानंद राय बोलते हैं कि अस्तित्व में मैं क्या बोल सकता हूँ, अस्तित्व में आप ही मुझे मेरे द्वारा बुला रहे हो, आप ही मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में हो और आप ही ये सब चीजें बता रहे हो। ये जो जिह्वा है आपके हाथ में एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के बराबर है, एक वीणा के बराबर है, आप जैसे बजाएंगे वीणा ऐसा बज रहा है, तो आप जो है मेरे जिह्वा एक वीणा के बराबर है, आप इस जिह्वा को बजा रहे हो तो कुछ ये शब्द निकल रहा है। अस्तित्व में मैं तो एक नीच जाति का हूँ, श्री रामानंद राय बताते हैं कि मैं एक शूद्र हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत फेमस श्लोक है वो कोट करते हैं, बोलते हैं कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केर नाय, ये कृष्ण तत्व वेत्तस्य गुरु है, किबा विप्र किबा न्यासी, कौन को कोई भी नहीं, सन्यासी हो कोई विप्र हो ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, शूद्र भी क्यों ना हो, शूद्र भी क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है, इफ ही नोज द साइंस ऑफ कृष्ण तो से गुरु हो है, ओ गुरु बन सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते नहीं आप और आगे वर्णन करो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन करते हैं, सॉरी रामानंद राय कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन करते हैं, बोलते हैं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन साथ साथ में वो इतने सुंदर है और उनके अलग अलग रूपों में जो उनका वृंदावन का जो सुंदरता है वो अनोखा है, बोलते हैं उनका वृंदावन का सुंदरता जो है अप्राकृत है। तो इसलिए उनका वर्णन करते बोलते अप्राकृत नवीन मदनम, वृंदावन अप्राकृत नवीन मदनम। तो रामानंद राय श्री कृष्ण का परिचय इस प्रकार देते हैं कि लाखों मदनों को भी आप जोड़ दिया जाए कृष्ण की सुंदरता के बराबर कोई हो नहीं सकता है। तब कृष्ण का वो इतने सुंदर है कि लक्ष्मी स्वयं उनके प्रति आकर्षित हो जाती है, नारायण स्वयं उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, इतना है कृष्ण स्वयं उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो कृष्ण की सुंदरता को ये वर्णन करने के बाद अभी श्रीमती राधा रानी का गुणों को वर्णन करते हैं। उस समय श्री राम श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि मुझे और सुनने का मन कर रहा है और लालसा कर रहा है, तब रामानंद राय बोलते हैं कि आज तक मुझे इसके परे और कोई मुझे प्रश्न पूछा नहीं है, तो पहली बार आप मुझे इसके और आगे जाने के लिए कह रहे हो। तो इससे पता लगता है कि आज तक यानी श्री चैतन्य महाप्रभु आके जब तक ये प्रश्न नहीं पूछा रामानंद राय से इसके और आगे जाने के लिए, तब तक ये जगत को ये जो गुह्य ज्ञान मालूम नहीं था। इसलिए बोला जाता है कि ये ज्योति गौरु ना होए तो तुबे की होए तो प्रेम रसो सीमा जगत जानते के, पूरा जगत कैसे जान सकता राधा रानी का महिमा, क्योंकि अभी कृष्ण का गुणगान किया, कृष्ण का वर्णन किया, कृष्ण का सौंदर्य और गुणों का वर्णन किया, अभी श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय बोल रहे कि और आगे जाओ, और आगे है क्या? राधा रानी का गुणों का वर्णन, राधा रानी का गुणों का महिमा। ये कौन प्रकाशित किया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया। किसके मुकाबले से प्रकाशित किया? रामानंद राय के मुकाबले से प्रकाशित किया। हमको ये जानना चाहिए रामानंद राय कौन है। रामानंद राय है विशाखा सखी है, और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधा रानी है। अभी असलियत में श्रीमती राधा रानी विशाखा से पूछ रहे हैं कि और आगे जाओ। असलियत में ये कृष्ण ही स्वयं राधा रानी का रूप में आके विशाखा के मुख से यानी ललिता मुख से उन्होंने सारा जगत को राधा रानी का गुणों को वो प्रकाशित किया। तो तब बोलते हैं कि रामानंद राय ये जो कृष्ण और राधा रानी के और कृष्ण के बीच में जो प्रेम के ये है, ये अद्भुत है। इस अद्भुत प्रेम लीलाओं में हमेशा राधा रानी जीतती रहती है। कृष्ण राधा रानी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, और राधा रानी का गुण है कि कृष्ण को संतुष्ट करना ही उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो इन दोनों के बीच में हमेशा इस प्रकार की प्रेम व्यवहार होता रहता है। कभी एक बार ऐसा हुआ जब राधा रानी रासलीला छोड़ के वो चली गई, तो उस समय या कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए नाना प्रकार के प्रयास किए, तो और खास करके ये दो श्लोक जय जय गोस्वामी कृत गीत गोविंदम से श्री चैतन्य रामानंद राय कोट करते हैं। बोलते हैं कि ये दो श्लोक है जिसमें कृष्ण राधा रानी को मनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इज ट्राइंग टू कन्विंस। तो उसमें कृष्ण बोलते हैं राधा रानी को कि मनाने के लिए नाना प्रकार के कार्यकलाप करते हुए बोलते हैं कि अभी देही पदपल्लम उदारम, आपके चरण कमलों को मेरे सर के ऊपर रखो। आपको जयदेव गोस्वामी का कहानी मालूम है जिसमें वो ये कृष्ण की और राधा रानी की लीलाओं को लिखते लिखते जब ये बात उन्होंने ये दृश्य उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान है कृष्ण और उनके सर के ऊपर पैर रखना, ये तो इम्पॉसिबल, मैं गलत देख रहा हूँ। तब उन्हें छोड़ के चले गए। तब वापस जयदेव गोस्वामी आए पद्मावती की पत्नी से, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, बाद में आके उन्होंने लिखा, लिख के चले गए। फिर वापस जयदेव गोस्वामी आते, पद्मावती पूछते हैं कि अरे खाना परोसो, अस्तित्व में तब मैं देखते हैं कि पद्मावती स्वयं खा रहे हो। बोला अरे ये कैसे खा रहे हो, मैं तो अभी आया हूँ, आज तक तुम्हें पतिव्रता धर्म को त्याग नहीं किया, तो आप तक ने मेरे खाने के बाद ही मेरा उच्चिष्ट को खाती, तो अभी मेरे से पहले कैसे खाने बैठ गए। तो पद्मावती डर गई, बोली कि आप तो आए थे कुछ समय पहले, तो उन्होंने आपने तो कुछ लिखा था ग्रंथ में, जैसे जय जय गोस्वामी जाके उनके ग्रंथ खोल के देखा तो उसके अंदर ये लाइन कंप्लीटली लिखा हुआ था, देही पदपल्लव उदारम, जिसमें सच में स्वयं कृष्ण आके लिख के गए कि अस्तित्व में ये सही बात है कि मैं राधा रानी को मनाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उनका चरण कमलों का धूल लेने के लिए तैयार हूँ। और रामानंद राय को और ये श्री चैतन्य और कहने के लिए बोलते हैं, तो रामानंद राय बोलते हैं इसके आगे मुझे आता नहीं, लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं और आगे कहो। तब ये राधा और कृष्ण का बहुत सारे सारों के बाद मिलन का जो बात है उनके ऊपर रामानंद राय एक गीत गाते हैं। जैसे ही गीत गाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अभी बस रामानंद राय और आगे मत कहो करके उनका हाथ के मुंह पे रख देते हैं। और श्री चैतन्य बोलते ये जो है राधा और कृष्ण के बीच में बहुत सारे अंतकाल के विरह के बाद जो मिलन का जो ये गीत है, ये इनके इन इसमें जो आनंद लेना, ये अस्तित्व में जीवन का लक्ष्य है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करने के बाद रामानंद राय को बताते हैं, रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु संवाद इधर एक दिन का समाप्त होता है, बोलते हैं कि मैं अगला दिन और आऊंगा और आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा। तब अगला दिन श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बीच में वो कुछ प्रश्नोत्तरी होता है। ये प्रश्नोत्तरी बहुत सुंदर प्रश्न है, एक एक प्रश्न बोलेंगे उसका उत्तर तुरंत श्री रामानंद राय देते हैं। द क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन श्री चैतन्य एंड रामानंद राय 17वें पेज में 17th पेज लिखा हुआ है। What is the highest standard of education? What is highest standard of education? सबसे सर्वोच्च विद्या क्या है? तब रामानंद राय बोलते हैं कि सर्वोच्च विद्या है कृष्ण भावना का ज्ञान। What is the greatest reputation? Who? सबसे बड़ा कीर्ति क्या है? भक्त का है सबसे बड़ा कीर्ति। सबसे फेमस व्यक्ति कौन है? एक भक्त है। What is the greatest value? सबसे बड़ा संपत्ति क्या है? वो है भगवान का प्रेम या कृष्ण का प्रेम। ये राधा कृष्ण का प्रेम जो है वो सबसे बड़ा संपत्ति है। Of all the distress, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो क्या है? Separation from a devotee, यानी भक्त का विरह जो है वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। Of liberated souls, जीवन मुक्तों में सबसे बड़ा जीवन मुक्त कौन व्यक्ति है? वो one who loves, one who has got love for Krishna, जो कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त किया है वो जीवन मुक्त है। Among all the songs, which is the best? सबसे बड़ा गीत क्या है? तो वो गीत जो राधा कृष्ण प्रेम का जो वर्णन करता है वो सबसे बड़ा गीत है। What is the most auspicious activity? सबसे श्रेयकर चीज क्या है? भक्तों का संग जो है सबसे शुभ कार्य है, संसार में शुभ कार्य है वो भक्तों का संग है। What is the best remembrance? सबसे बड़ा स्मरण की कार्यकार है। One should always remember the past times of Radha and Krishna. राधा कृष्ण का जो लीलाओं को स्मरण करना वो सर्वोच्च चीज है। What is the best meditation? सबसे बड़ा ध्यान करने के लिए क्या वस्तु है? क्या है वो? राधा कृष्ण का चरण कमलों जो है वो सबसे बड़ा ध्यान करने का ध्यान का लक्ष्य है। Where should the living entity live? कहाँ वास करना चाहिए? जहाँ He should live in a holy land of Vrindavan. Vrindavan में वास करना चाहिए। What is the best thing to hear? सबसे बड़ा चीज कौन सा है जो श्रवण करने योग्य? जो है राधा कृष्ण का लीला। Who is the most worshipable deity? उपास्य कौन है? राधा और कृष्ण है। Where do the seekers of bhukti and mukti go? Those who wish to merge into Brahman become trees, and those who desiring sense gratification go to heavenly planets. जो भुक्ति चाहते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं वो पेड़ बन जाते हैं। Those who seek knowledge of things other than past tense or Lord Krishna are like crows who eat bitter nimble fruit. जो राधा कृष्ण का जो लीलाओं के अलावा कुछ और में जो रमण करना चाहता है वो कौवे जैसे हैं जो निम्ब फल को खाना चाहते हैं। Devotees are like cuckoos, devotees जैसे हंस जैसे हैं, जो कुकू जैसे हैं, who eat the relishable mango of love of God, जो कृष्ण प्रेम को चखते हैं। Lord reveals his form as Radha and Krishna to Ramanand Raya. जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को समाप्त किया, बात रामानंद राय ने सब बातों को बताया, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्नों को दिया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके जो वास्तविक स्वरूप है, राधा और कृष्ण का जो मिलन स्वरूप है उनको दिखाते हैं। जैसे रामानंद राय ने उसको देखा तो वो बेहोश हो गए, ही फेंटेड। तो रामानंद राय क्यों बेहोश हुए, उसका कोई तत्व क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु जो है राधा और कृष्ण कैसे है, ये सब के बारे में गौर पूर्णिमा आ रहा है तो गौर पूर्णिमा का दिन तो चर्चा करेंगे, लेकिन उस दिन तो दोपहर का समय चर्चा हो सकता है, बस वो बताएंगे। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि कल कुछ प्रोग्राम है नहीं, कल शाम को मंदिर में अगर 7:30 बजे आएंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व है या तीन अंतरंगिक कारण, वैरिंग कारण, रामानंद राय का बेहोश होने के पीछे क्या कारण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक आदिवास होगा इस गौर पूर्णिमा उत्सव का। ये रामानंद संवाद बहुत कोई है, ये प्रयोजन ज्ञान को इस रामानंद संवाद में श्री चैतन्य महाप्रभु सारे जगत को ये खोल देते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आने तक राधा रानी का गुणों को कोई नहीं जानता था, वास्तविक गुणों को। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे आए, जैसे उन्होंने सारा भंडार खोल दिया राधा रानी का गुणों का भंडार, तो सभी आचार्य आके राधा रानी कौन है सब कुछ उन्हें बोलो सब लोग वर्णन करने लगे। इसलिए हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम तक नहीं लिया गया है। क्यों? नाम लिया गया है लेकिन गुप्त रूप में लिया गया है, उनको खुला नहीं प्रकट किया गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने आके राधा रानी का गुणों को उन्होंने खुले रूप में व्यक्त किया। तो इस प्रकार हम पांच संवादों का एक तरीके से ओवरव्यू टाइप किए उनका गहराई में जाएंगे तो और आनंद अनुभूति होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बुक लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, तो इन सब बातों को उधर आपको प्राप्त होगा। तभी समय आया परीक्षा का समय, तो अभी आप सबको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, बांटिए क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस है और उस क्वेश्चन के सामने मार्क्स भी लिखा है, एक एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है। आप कम से कम 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उनमें से आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट फॉर 100 मार्क्स, सेलेक्ट एनी 100 मार्क्स एंड यू कैन अटेम्प्ट फॉर इट। आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कहीं गलत कर रहा हूँ, जितना अच्छा उतना अटेम्प्ट कीजिए और उसका आंसर्स वगैरह वो पीछे के पेज में लिख सकते हो आप। ये क्या दे रहे हो, आंसर शीट पीछे ही लिखेंगे, अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो बाद में। और जरा अपना नाम लिख दीजिए, यू राइट द नेम ऑन टॉप और वापस दे दीजिएगा। ये हमारा एग्जाम, जो व्यक्ति एग्जाम लिखा है उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आज कोई आया नहीं है और उनको सर्टिफिकेट चाहिए तो वो बाद में भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन ये हफ्ते के अंदर है। अगले संडे को संडे फीस लेक्चर में सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। हरे कृष्ण, स्टार्ट आंसरिंग नाउ। 5-10 मिनट में हो जाएगा पूरा आंसर। और नो कॉपिंग। हिंदी में और इंग्लिश में जो भाषा में चाहे लिख सकते हैं। और वो क्वेश्चन अगर आपको इंग्लिश में है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं किसी से भी जाके क्या है।